بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ کا ارشاد ہے ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہے منہا اربعۃ حرم جن میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں وہ 4 مہینے ذیقعد ذی‌الحج محرم اور ایک مہینہ کچھ فاصلے کے بعد رجب کا یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں ایک آیت پاک تو یہ ہوئی اور دوسری آیت پاک ہے الحج اشہر معلومات حج کے کچھ مشہور معلوم مہینے وہ مہینے شوال ذیقعد اور ذی‌الحج کے 10 دن اس لحاظ سے اب ہم جن دنوں میں اس وقت ہم ہیں یہ اشہر حرم بھی ہیں اشہر حج بھی ہیں اس اعتبار سے ان دنوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ان کا احترام ہونا چاہیے کفار مکہ بھی ان دنوں میں ان مہینوں میں ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اس کا بھی لحاظ رکھتے تھے اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے لیکن اس میں کچھ گڑبڑی بھی کر دیتے من مانی بھی کر دیتے تھے اس کو بھی اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے مختصر وقت میں اشارے سے کچھ باتیں عرض کی جا رہی ہیں توجہ سے سنیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں ان ایام کی خاص اہمیت ہو اسی طریقے سے اب اگلا مہینہ جو شروع ہوگا ذی‌الحج کا اس میں کئی عبادتیں جمع ہو رہی ہیں ایک تو حج کی محترم شان عبادت ہے لاکھوں حضرات پہنچ چکے ہیں اور پہنچیں گے اور پوری دنیا سے آنے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ایک وہ عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے یہ عبادت اور اس کے بھی دن متعین ہیں اور ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر اللہ کی نظر میں کوئی اور عبادت نہیں ہے اسی طریقے سے شروع کی جو 10 راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی بھی قسم کھائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر یہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی تو وہ ذی‌الحج کی 10 راتیں راتیں بھی محترم ہیں دن بھی ہیں جس میں روزے رکھے جائیں اور خاص طور سے عرفے کا روزہ اہتمام سے رکھا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ جل جلالہ اس کی وجہ سے दो साल के गुनाह माफ फरमाएंगे, ये जो साल गुजरा है और आइंदा साल जो आने वाला है इन दो सालों में। इस तरीके से कई चीजें, कई इबादतें, कई नेकियां इन दिनों रातों में जमा हो रही हैं, तो गोया कि यह नेकियों का सीजन, इसलिए हमें खास इसका एहतराम करना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए। और हमारे अंदर कुछ इल्म में, अमल में, अल्लाह के खौफ में, खशियत में इजाफा हो, इस लिहाज से इस वक्त इन चीजों को याद दिलाया जा रहा है, ताकि हम इस्तेहज़ार के साथ भी, बेदारी के साथ भी, फला फला वक्त में, फला फला रातों में, फला फला दिनों में इन चीजों का एहतमाम करें। इस वक्त जो आयतें पढ़ी गई हैं, बज़ाहिर इन आयतों में जानवरों को ज़बह करने का तज़किरा है, लेकिन उसके दरमियान में अल्लाह जल्ल जलालहू अपने खास बंदों की जो सिफात हैं उनको बयान फरमा रहे हैं। तो कुर्बानी बज़ाहिर एक इबादत, हमें यह नज़र आती है कि एक जानवर ज़बह हो रहा है, लेकिन उसके ज़हन में, उसके ज़िम्मन में कितनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहे हैं, उनको तवज्जो से सुने। फरमाया वलिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसका, हमने हर उम्मत के लिए, पहली कौमों के लिए भी कुर्बानी के तरीके मुकर्रर किए। तो कुर्बानी खास हमारी उम्मत ही के लिए नहीं है और हम पर ही नहीं है, हमसे पहली उम्मतों के लिए भी, पहले लोगों के लिए भी, बाकी उसके तरीके अलग। तो फरमाते वलिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसका, और अल्लाह जल्ले जलालहु ने एक दूसरी आयत में उसकी तरफ फरमाया कि ऐ हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें इस सिलसिले में लोग तुमसे उलझें और बहस करें यह नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उनका तरीका उनके लिए मुबारक, हमारा तरीका हमारे लिए है, और तुम उनको सही रास्ते की रहबरी करें और उनको बताएं। तो इसलिए कुफ्फारे मक्का जो उलझते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह के सवालात करते थे। एक सवाल ये कि इंसानों का मारा हुआ जानवर तो हलाल कहते हैं तुम, और खुद से जो मर जाए, यानी अल्लाह की तरफ से जिस जानवर को मौत आए उसको तुम मुर्दार समझते हो और हराम मानते हो, ये क्या बात हुई? तो ये एक एतराज़ था। तो ये बताया जा रहा है कि खुद से जो मर रहा है वो जानवर, उस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, और जिस जानवर को हम ज़बह कर रहे हैं उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है। तो अल्लाह के नाम की अजमत इसमें है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जानवर खुद से मर रहा है उसके अंदर बहता खून है जो हराम है, नजीस है, नापाक है, और जिस जानवर को ज़बह किया जा रहा है उसका खून बहाया जा रहा है तो ये पाक है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह का हुक्म। तो फरमाया वलिकुल्ली उम्मतिन जालना मनसका। अब ये कुर्बानी के जो तौर तरीके हैं, कुछ उम्मतों में ये कि जानवर रख दिया जाता था, पहाड़ पे रख दिए, जो जानवर कबूल होता ऊपर से आग आती उसको लेके चली जाती जी, इस तरीके से मुख्तलिफ शक्लें थी। कुफार मक्का भी जो है कुर्बानियाँ करते थे, लेकिन बुतों के नाम से करते थे, उसका खून काबतुल्ला में लीप देते थे, इस तरह की हरकतें किया करते थे। तो फरमाया ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी का हमारा तरीका भी पाकीज़ा है, और मंशा मर्जी ये के लिए कुरस्मल्लाही अलामा रजा का हूँ मिम वही मतिला नाम, ताकि अल्लाह ने जो मवेशी और जो जानवर तुमको दिए हैं इसमें यह भी बता रहे हैं कि तुम मालिक नहीं हो, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें दिया है, तो अल्लाह हकीकी मालिक हैं। ये जो गैर एतराज करते हैं कि लोग ये ईमान वाले जानवरों को ज़बह करते हैं, यानी जानदार को मुर्दा बनाते हैं, उस पर जुल्म करते हैं, जो जानदार चीज को मार देते हैं, ये जो एतराज है उसका जवाब भी इसी में है कि मिल्क अल्लाह ही की है, अल्लाह सबका मालिक है, मालिक को अपनी चीज में पूरी तरीके से अख्तियार है। तो अल्लाह तबारक व ताला इसको हमारे लिए हलाल कर रहे हैं और हमें खाने के लिए दे रहे हैं, तो अल्लाह अपनी चीज दे रहे हैं, तो इसमें किसका कौन एतराज करे और किसे एतराज का हक हासिल है। तो इसीलिए फरमाया अलामा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, जो चौपाए जो जानवर अल्लाह ने तुम्हें अता किए हैं उन पर तुम अल्लाह का नाम लो। तो यहां पर अल्लाह के नाम उसकी अजमत को बताया जा रहा है कि सिर्फ जानवर जबा होना यह बात नहीं है, अल्लाह का नाम लिया जाए। तो अल्लाह का नाम इतनी अजमत वाली चीज है, इतनी बड़ाई है। फिर फरमाया फइलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक है, तो इसलिए बुतों के नाम पर जुबा नहीं करना चाहिए, दूसरों के नाम पर, गैरों के नाम पर नहीं होना चाहिए, बस अल्लाह ही के नाम पर होना चाहिए, वही सबका माबूद है। फइलाहुकुम इलाहुन वाहिद फलहू अस्लिमू, उसी की फरमाबरदारी होनी चाहिए, उसी की ताबेदारी होनी चाहिए। तो समझ गए, तो बंदगी हो, इबादत हो, इताअत हो, फरमाबरदारी हो, ये सारी चीजें किसकी होनी चाहिए? अल्लाह ही की होनी चाहिए और किसी की नहीं। तो फलहू अस्लिमु, उसके बाद में फरमाया बशीरिल मुखबितिन, अल्लाह के सामने झुकने वालों को बशारत सुना दो। अहमद सोने का वक्त नहीं है, इसीलिए तवज्जो चाहते हैं हम, आप बुरा मत मानिए, आप हजरत बहुत दूर से सफर करके आते हैं, घंटों का सफर करते हैं, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। ऐसी मजलिसों में कभी किसी के दिल पर कोई बात लगी तो जिंदगी भर का मसला हल हो जाता है, और शैतान ऐसी चीजों में ही हमको महरूम करना चाहेगा, इसलिए ऐसी महरूमी से अल्लाह की पनाह मांगे। और थोड़ी देर के लिए जरा कुर्बानी देकर, कुर्बानियों का बयान है, इसलिए जरा नींद को भी हम कुर्बान करें। बेतकल्लुफ में हम कहते हैं, बुरा भी नहीं मानते हमारे अहबाब, इंशाअल्लाह ताला नहीं मानेंगे ना, वरना फिर हमारे बैठने का कोई मकसद नहीं, आपके आने का कोई मकसद नहीं रहता है। इसलिए उबशरिल मुखबितीन फरमाया, अल्लाह के सामने झुकने वालों को खुशखबरी सुनाओ। ये अल्लाह के सामने झुकने वाले कौन? हकीकी अल्लाह के सामने झुकने वाले कौन? किसी के सामने हाथ जोड़ दिए, किसी के सामने झुक गए, आजीजी जाहिर करें, जी ये जाहिर की बातें नहीं, असल अल्लाह के सामने झुकने वाले कौन? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, अल्लाह को पहली बार फरमाया, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं। अल्लाह का कोई हुक्म हो, अल्लाह ने किसी चीज से मना किया हो, अल्लाह ने किसी चीज से डराया हो, तो फौरन दिल डर जाते हैं, दिल सहम जाते हैं। ये पहली निशानी है अल्लाह के सामने झुकने वालों। तो इसलिए जाहिर का झुकना एक है, आजिज़ी जाहिर करना एक है, उठ के खड़े हो जाना एक है, ये अलग चीजें हैं, लेकिन दिल असल में डरे, दिल असर ले, ये पहली निशानी है। तो फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, और दूसरी जगह फरमाया वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ता है। वो कैसा भी हाल हो जी, कैसे लोग उनको डराएं और वहशत दिलाएं और घबराएं, लेकिन उस हाल में भी वो कहते हैं हसबुनल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है। तो अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक बढ़ता है और अल्लाह की जात पर एतमाद बढ़ता है, तो ये ईमान का पहला तकाजा है। तो फरमाया अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, वो लोग जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो उनके दिल डर जाए, सहम जाए। दूसरी बात फरमाया वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, और अल्लाह के सामने झुकने वाले वो हैं कि इन पर जो भी हाल आए, जैसी भी आजमाइश आए, जैसी भी परेशानी आए, तो ये सब्र करने वाले होते, बेसब्र नहीं होते, बेकरार नहीं होते, शिकवा शिकायत करते हुए नहीं रहते, और अल्लाह जिन्ने जलालू जो जिंदगी भर खुशहाल रखते हैं और अच्छा रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जब जरा कोई हालत नामुवाफिक आ गई तो सबको बोल के फिरते हैं। हजरत अता इब्न अबी रबाह रहिमहुल्लाह, बहुत बड़े ताबई, जलील उल कद्र ताबई, फरमाते हैं अल्लाह ने मुझ पर यह बात खोली और कहा कि अता, बंदों के गुनाहों से भरे हुए दफ्तर मेरे सामने आते हैं, मैं किसी के सामने खोल कर नहीं दिखाता और नहीं बताता, और मेरी तरफ से कोई चीज आ जाती है तो मेरे बंदे सबके सामने बोलते फिरते। जिस अल्लाह ने हमें इतने सालों तक, 40 साल, 50 साल, 60 साल तक खिलाया हो, पिलाया हो, सेहत से रखा हो, आफियत अता फरमाई हो, एक आध दिन में इंसान सबके सामने बोलते फिरता है, शिकवे करता है, तंगियों को जाहिर करता है, परेशानियों को जाहिर करता है, बीमारियों को बयान करता है, अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, नाशुकरी से बचाए, शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाए वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, माँ ये जो है आम है, जो हालत भी, जिस लाइन की हालत भी हो। देखो मालदारों पर माली एतबार से आजमाइश, गरीबों पर गुर्बत के एतबार से आजमाइश, कमजोरों पर सेहत के एतबार से आजमाइश, दूसरों पर मातहती की आजमाइश, बहरहाल जो भी हो, जिस लाइन की भी हो आजमाइशें हैं। तो फरमाया माँ असा बहू, जो आजमाइश भी, जो हालत भी, जो परेशानी भी, जो तंगी भी आती है, उस पर सब्र करने वाले ये हकीकी अल्लाह के सामने झुकने वाले। तो जिंदगी तो मुकद्दर है, जितने साल तय है वो तो होगी, उतना रहेंगे, उसके बाद तो जाना ही है। बाकी जो हालात इंसान पर आएंगे वो आर्जी हैं, ये वक्ती हैं, हालात आएंगे छट जाएंगे, लेकिन उन हालात में इंसान की जो कैफियत होगी, उसका दिल का जो हाल होगा और उसके जो अमल होंगे, वो चीज़ें सब महफूज हो जाएंगे। ये है असल चीज़। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह की तरफ झुकने वाले बने। एक मरतबा हम जाम्बिया हाजिर हुए एतकाफ के मौके पर, रमजान का महीना था, तो हमें मलेरिया बुखार आ गया और बहुत सर्दी, ठंड, पहले से वहां सर्दी, और इस बुखार ने तो हमको हिला के रख दिया था, और इतनी सर्दी होती थी, दो दो कंबल हम पे उड़ाए जाते थे, तो फिर भी हम फिटर देते, बहुत परेशान होकर अब अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं, इतनी इतनी दवाएं खा रहे हैं, अब एक वतन की दूरी है, फिर गुर्बत है, परदेसी है, ये सब चीजें याद आकर दिल बहुत गमजदा हो गया था। ऐसे वक्त में मैं बहुत दुखी दिल के साथ जाकर हजरत के सामने एकदम रोए जैसा मैं जाकर, हजरत मैं बीमार हो गया हूं करके एकदम बोलते ही हजरत सुनते ही फरमाए जिंदगी का एक हिस्सा है। बोले मैं बोले ये कह रहे बाबा, इतने इससे आपको बोले तो कि सुंदर को तसल्ली देंगे, शायद ये करेंगे वो करेंगे, तो कुछ नहीं सका, जिंदगी का एक हिस्सा है ना। मेरी पूरी बुखार उतर गई, पूरी परेशानी खत्म हो गई, जो बोझ था हल्का हो गया। फिर मैं सोच में पड़ गया कि वाकई बीमारी तो जिंदगी का एक हिस्सा ही है ना, और क्या है इससे बढ़कर। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की खास तौफीक और उनकी जो सिफत। अब देखिए हल कर दे रहे मसलों को। तो इस तरीके से फरमाया والصابرين على ما أصابهم, जो हाल भी आए उस पर सब्र करने वाले। तो एक तो हाल है, और सबसे बुरा हाल क्या है, इंसान गुनाहों में मुबतला हो, ये बहुत बुरा हाल है। तो गुनाहों पर सब्र करने वाले हों, नेकियों पर जमने वाले हों, इस्तेकामत के साथ अमल करने वाले हों। तीसरी चीज फरमाए والمقيم الصلاة, नमाजों को कायम करने वाले, नमाजों को कायम करना, नमाज पढ़ना नहीं फरमाए, नमाजों को कायम करना। इसमें भी बड़ी कोताही होती है, बड़ी लापरवाही होती है, नमाजें कई कई वक्त की छूट जाती हैं, अल्लाह माफ फरमाए। फजर की नमाज बहुतों की छूट जाती है, अब क्या रहा बोलो, हम जाहिर अपनाए हैं, ये कुछ आते हैं जाते हैं, लोग हमको नेक समझते हैं, लेकिन फरीजा है कि वो हमसे छूट रहा है। ये बहुत डरने की बात है, बहुत ज्यादा अल्लाह की तरफ माफी मांगकर अल्लाह से तौबा करने की बात। तो फरमाए बोल मुकीम सलाम वो मीमा रजक ना हो उनको, और जो कुछ हम उनको अता करते हैं उसमें वो खर्च करते हैं। इसमें भी माँ का लफ्ज है कि जो हम अता करते हैं, माल ही नहीं है, जो भी है वो अल्लाह ही की दी हुई चीज है, उसको खर्च करें, सलाहियत हो, इल्म हो, जो भी हो, हुनर हो, जो भी, उसमें माल भी एक है, तो जो भी हम अता करते हैं उसमें वो खर्च करते हैं। अब अल्लाह के यहाँ कितना खर्च किया वो नहीं है, कितने में कितना खर्च किया ये है, तो क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। एक आदमी 1000 रुपए में 100 रुपए दे रहा है, एक आदमी 1,00,000 रुपए में 1,000 रुपए दे रहा है, तो 1,000 रुपए ज्यादा है अगर चेक है, लेकिन वो 100वां हिस्सा दे रहा है, और ये 1,000 में 100 रुपए दे रहा है, 10वां हिस्सा दे रहा है, तो 10वां हिस्सा दे रहा है, तो कितने में कितना दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, कोई किसी को कुछ दे, हदिया दे, तोहफा दे, तो अल्लाह ताला तू जो तूने मुझे दिया है उसका बदला तुझे दे, और जो तेरे पास है उसमें अल्लाह बरकत दे, ये दुआ है। तो मालूम हुआ कि कुछ है इंसान के पास, उसमें से कुछ दे रहा है, तो देने पर अजर की दुआ है, और जो है उसमें बरकत की दुआ है, दोनों चीजें आ गई। सुभान, ये नहीं कि जाकर कुछ दिया तो अभी कितना है तुम्हारे पास, कुछ तो देता से भी वापस ले लिया है कि नहीं, 500 रुपये कोई दिए तुम्हारी दुकान में अभी कितना है अगर पूछे तो लाओ हजरत जब तो है वो। अल्लाह ऐसे नहीं है, जो भी देते हैं अल्लाह उसकी कदर करते हैं, इसीलिए फरमाए वो मिम्मा रज़क ना हूं युन्फिकून। इन चार चीजों को फरमाया कि ये सिफात जिनके अंदर हैं वो अल्लाह के सामने झुकने वाले। फिर अब यहाँ से एक बयान शुरू हुआ, वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फीहा खैर। शाइरुल्लाह अल्लाह के दीन की कुछ निशानियां, काबतुल्लाह है, हरम मोहतरम है, कुरान है, रमजान है, समझे, ये सब अल्लाह के दीन की निशानियां हैं, तो इनका एहतराम होना चाहिए। इंसान अमल में कमी हो, कोताही हो, एक अलग चीज है, लेकिन बे एहतरामी हो, तौहीन हो, ये एक अलग चीज है, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दीन की जितनी भी निशानियां हैं, इन सब का एहतराम होना चाहिए, इसमें से किसी की भी बेहुर्मती नहीं होनी चाहिए, ये बहुत डरने की चीज है। तो फरमाया वलबुद न जालना लकुम मिन शाइरिल्लाह, एक जगह अल्लाह फरमाते हैं ओमई अज़िम शाइरिल्लाह फइन्नहा मिन तक्वल कुलूब, जो अल्लाह की इन निशानियों की, दीन की निशानियों की ताजीम करता है, वो दिल के तकवे की बुनियाद पर, अल्लाह का डर उसके दिल में होने की बुनियाद पर वो इनकी अजमत करता है, एहतराम करता है। तो अल्लाह के दीन की निशानियों में से वल बुदना, ये कुर्बानी के जो जानवर हैं, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल बुदना जालनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह लकुम फीहा खैर, तुम्हारे लिए इसमें खैर है। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो कुर्बानी है सिर्फ जानवर ज़बह करने तक की बात नहीं है, फज़कुर इस्मल्लाह अलैहा सवाब, ऊंट जो होते हैं उनकी जो कुर्बानी होती है उसको नहर कहते हैं, उसका एक तरीका होता है, तो ऊंट को लुड़का कर इस तरीके से नहीं ज़बह करते, मुश्किल होता है, करना भी नहीं चाहिए, मकरूह भी है, इसलिए उसके तरीके, उसके ज़बह का तरीका उसको नहर कहते हैं। एक पैर को बांध देते हैं, तीन पैर पे वो खड़ा रहता है, और जो रग होती है उसकी उसको फाड़ देते हैं, और खून बहने के बाद थोड़ी देर के बाद वो सुस्त पड़ता है, कमजोर होता है, तो वो गिर जाता है, फिर उसके बाद में जो है उसकी खाल उधेड़ी जाती है वगैरह। तो यहां फरमाया जा रहा है कि इन पर अल्लाह का नाम लो, फज़कुर इस्मल्लाह अलैहा सवा, सफ बस्ता जब ये खड़े हों तो इन पर अल्लाह का नाम लेकर इनको ज़बह करो। फैज़ा वजब जुनूब, जब वो अपने पहलू पर गिरे, तो मतलब यह है कि पूरी तरीके से उनकी जान निकल जाए, तो अल्लाह का नाम लिया गया उस पर जानवर पर, अल्लाह की अजमत बयान की गई, तो अब फकुलू मिन्हा वतईमुल कानिया वल मुअतर, उससे खाओ, खुद भी खाओ, और जो सवाल नहीं करता ऐसे को भी दो, और जो सवाल करता है ऐसे को भी दो। तो अल्लाह ने इसमें बड़ी वसअतें रख दी, इसमें बड़ी वसअत है, कुर्बानी का गोश्त खुद खाएं, गरीबों को दें, रिश्तेदारों को दें, हत्ता के गैरों को भी इजाजत है इसकी, कुर्बानी के गोश्त, जकात का माल नहीं दे सकते, कुर्बानी का गोश्त दे सकते। तो फरमाया इससे तुम खाओ, वतईमुल कानिअ वल मुअतर, कुछ लोग होते हैं बाइज्जत होते हैं, सवाल नहीं करते, मांगते नहीं है, उनको भी दो, कुछ लोग रहते हैं मांग लेते हैं, जुबान खोल लेते हैं, उनको भी दो। अल्लाह फरमा रहे हैं इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, कदाली कसखर नाहा लकुम, हमने इसको इतने बड़े जानवर को तुम्हारे अंडर में किया है, तुम्हारे ताबे किया है, वरना क्या हिम्मत थी तुम्हारी, क्या मजाल थी तुम्हारी कि तुम इतने बड़े जानवर को ज़बह कर सकते हो, अल्लाह ने मुसखर किया, ताबे बनाया तुम्हारे अंडर में, लाल लकुम तश्कुर, ताकि तुम अल्लाह की इस नेमत की शुक्रगुजारी करो, कदरदानी करो। देखो अल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह हुआ है, नाम जब अल्लाह का लिया गया है तो वह जानवर सारा का सारा अल्लाह ही को जाना था, लेकिन अल्लाह सारा का सारा हमको ही लौटा रहे, समझ रहे। फरमाया कि सिर्फ शुक्रगुजारी करो। अब आगे की आयत और साफ है, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह तक इन जानवरों का ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है, खून तो जमीन के पेट में चला जाता है और गोश्त हम सबके पेट में पहुंच जाता है कि नहीं, कि उसमें भी समझिया रहे, तो ये घर से बकरे की पूरी रान वो घर की समझी, वो समझी की रान ये पूरे अपने में से है कि नहीं है। तो चलो अल्लाह की तरफ से इजाजत है, खूब खाओ खूब खिलाओ, तो सारा गोश्त अल्लाह तबारक व तआला हम ही को लौटा है। आजकल इसे देखे तो भी बिजनेस का, ऑनलाइन बिजनेस का बड़ा जुनून हो गया है, अब घरों में खाना पकाना खत्म हो गया है, एक बटन मारते ही बुक होता, वहां से फला गाड़ी में ला देता, ये ला कर देता है, अल्लाह अकबर, बहुत ज्यादा। अब बुरा मत मानिए, इसमें बेबरकतें आती हैं, याद रखो, اس میں مختلف قسم کی بیماریاں آتی ہیں, نحوستیں ہیں, یہ معلوم نہیں کون پکا رہا ہے, کیسا پکا رہا ہے, کس کے ہاتھ کا تم کھا رہے ہو, ایسی ہی زندگی گزر رہی ہے. اب اعمال یہ رات کو کھا کر سوئے, صبح کی نماز چٹ ہو گئی ہماری, ارے بھائی کس کے ہاتھ کا کھا رہے ہو, ذرا سوچو تو صحیح. خالی آن لائن میں, اس میں ڈسکاؤنٹ کیا, اس میں یہ کیا, اس میں لچک کی چیزیں کیا, دنیا بھر کی بیماریاں. ہمارے حضرت اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہیں, فلائٹوں کا کھانا کھاتے نہیں, اور حضرت بہت اس سلسلے میں احتیاط برتتے. حضرت نے اپنے مدرسے کا ایک واقعہ بھی سنایا, ایک بچہ جو ہے اس پر اساتذہ بہت محنت کر رہے ہیں, لیکن وہ بچہ ہے کہ بہت پیچھے ہے. اساتذہ مجبور ہو گئے حضرت سے آ کر کہنے لگے کہ حضرت ہم محنت کر کر کے تھک گئے ہیں, لیکن یہ بچہ آگے ہی نہیں بڑھتا ہے, اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے. لیکن بعد میں جب معلوم کیا تو وہ بچہ جب اسکول میں پڑھتا تھا تو بالکل رینک اسٹوڈنٹ تھا, وہ بہت آگے آگے آتا تھا, وہاں اس کی یہ حالت تھی, اب یہاں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, کیوں حفظ میں اتنا پیچھے ہے. تو حضرت نے ایک بار اس بچے کو بلا کر پوچھا کہ بھائی تم گھر جب جاتے ہو چھٹی میں, ہفتے کی چھٹی ہو, مہینے کی چھٹی ہو, سالانہ چھٹی ہو, اس میں جو جاتے ہو تم, تو تمہارا دن بھر کا کیا نظام رہتا ہی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے والد بھی ڈاکٹر ہیں, میری والدہ بھی آفس میں کام کرتی ہیں, وہ شام کو آتے ہی آتی ہیں, پھر ہم سب مل کے باہر جاتے ہیں, اب جا کر جو ہے ہم کھا کے واپس آ کے سو جاتے ہیں. پھر حضرت نے جب ہوٹلوں کے نام پوچھے تو اسی وقت حضرت کو یہ چیز کھٹکی کہ یہ ہوٹلیں تو بالکل مناسب نہیں ہیں, اور یہاں کا جو کھانا ہے اسی کا یہ اثر ہے کہ ایسے ہوٹلوں میں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے پوری نورانیت ختم ہو رہی ہے, ظلمت آ رہی ہے, عمل کا جذبہ ختم ہو رہا ہے. تو حضرت نے ان کے والدین کو بلا کر سختی کے ساتھ حضرت نے کہا کہ بھائی آپ اپنے بچے کو لے جائیے, ہم اب ہار مان چکے ہیں, تھک چکے ہیں, ہم سے نہیں ہوتا. اب وہ حضرت کے ہاتھ پیر پکڑ رہے ہیں, یہ عاجزی کر رہے ہیں, منت سماجت کر رہے ہیں کہ نہیں حضرت کسی طریقے. تو پھر حضرت نے ایک شرط رکھی اور یہ فرمایا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تم لوگ جو ہے فلاں فلاں ہوٹلوں میں جا کر کھاتے ہو, اسی کا اثر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ اتنی محنت کے باوجود بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. تو انہوں نے اعتراف کیا, مانا کہ ہاں حضرت یہ بات تو. اس کے بعد میں حضرت کے سامنے انہوں نے عہد کیا, وعدہ کیا کہ آئندہ سے یہ بات نہیں ہوگی. چنانچہ اس سے جب پرہیز کیا گیا, پھر اب بچہ جو پڑھنا شروع کیا تو ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے میرے رسولوں پاکیزہ چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو. علماء کرام فرماتے ہیں ان دو میں جوڑ ہے, جب پاکیزہ چیز اندر جائے گی تو اندر سے نکلنے والے اعمال وہ صحیح ہوں گے. تو اسی لیے عقل حلال صدق مقال, یہ دو چیزیں بہت بنیادی چیزیں ہیں. عقل حلال, حلال کھائے انسان, صدق مقال بولے تو سچ بولے. جب حلال کھائے گا تو ان چیزوں کی توفیق ہوگی, اچھائیوں کی توفیق ہوگی, نیکیوں کی توفیق ہوگی. جب ایسی ویسی چیزیں کھائے گا تو انسان کے اعمال بھی ویسے ہوں گے. اگرچہ وہ فی نفسی اپنی ذات کے اعتبار سے اچھا ہے, وہ انسان اس قدر برا ایسا نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کا اثر اس پر ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ کھانے پینے میں احتیاط برتا جائے. تو آج جو ہے ہر چیز میں جو ہے یہی شروع ہو گئے. مجھے اصل میں بولنا یہ تھا کہ آج جو بھی چیز بک کر رہے ہیں اس میں کیش بیک بولتے ہیں نہیں, ارے ہوتا نہیں ہوتا, بولو بھائی کتنا تک بیک کرتے, بولو کتنے پرسنٹ بیک کرتے, بولو بھائی کمپنی والے 50%. اللہ تعالیٰ آپ کو گوشت بیک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, جو قربانی دے رہے ہیں وہ پورا گوشت دے رہے ہیں, 50 بھی نہیں بلکہ 100% دے رہے ہیں, 1% بھی اللہ نہیں رکھ رہے ہیں. تو اللہ کے نام پر تم نے جانور زبان کیا, لیکن اللہ نے پورا کیا کر دیا, ادھر کیش بیک بولے ادھر گوشت بیک کر کے پورا گوشت جو ہے آپ ہی کو دے دیا, ادھر 50% بولے ادھر 100% ہی دے دیا. اللہ اکبر. تو فرمایا لئینا اللہ لحومھا ولا دماؤھا, اللہ تک نہ ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اصل بات جو ہے ولا کی ینا لہ تقوا منکم, ہاں تمہارے دل کا جذبہ, تمہاری دل کی کیفیت, تمہاری دل کی حالت ہے وہ پہنچتی ہے اللہ تک. تو اللہ جل جلالہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان قربانیوں کی وجہ سے تمہاری دل کی کیفیت کیا ہے, اس کو آزما رہے ہیں, خوش دلی کے ساتھ دے رہے ہو کیا. فتیبو بہا نفسا, حدیث میں آتا ہے قربانیاں دو خوشی کے ساتھ, دو خوش دلی کے ساتھ دو, समझ लें, बेहतर से बेहतर जानवर हो, हिस्सा ले रहे तो अच्छा से अच्छा हिस्सा लिया जाए। तो इस तरीके से दिल खोल कर, और एक रिवायत में है जमीनू हाया, तुम्हारी कुर्बानियों के जो जानवरों को अच्छा जी सेहतमंद बनाओ, मुख्तरो ताजा बनाओ, मोटा फई नहा मताओ, वो तुम्हारे लिए सिरात पे अलग सिरात ये मताओ कि पुल सिरात पे तुम्हारे लिए सवारियां बनेंगी। तो इसलिए खुश दिली के साथ, अच्छे जज्बे के साथ, तो फरमाया बोला कि ये ना बहुत तकवा मिनकुम, तुम्हारे दिल का जज्बा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचता है। यहां भी कोई ये कहे कि भाई असल तो अंदर ही की कैफियत है, वही असल है, वही सब कुछ है, अल्लाह ने फरमा दिया इस धोखे में भी मत पड़ जाओ, असल दिल की कैफियत है, दिल की कैफियत है करके शैतान बहुत से लोगों को हटा भी देता है। इसलिए कुछ ऐसे गुमराह लोग भी हैं, वो बोलते हैं नमाज भी दिल की नमाज ही है, बोलते हैं असल नमाज दिल की है, तुम लोग सिर्फ ढोंग की नमाज पढ़ते हो, दिखावे की नमाज पढ़ते हो, बोलते वो लोग। एक फिरका है, एक तबका है जो खुलकर बोलता है और हरगिज नमाज नहीं पढ़ता हो तो वह और बिल्कुल खुलकर बोलता है कि तुम लोग दिखावे की नमाज पढ़ते हो, असल नमाज दिल की नमाज है, दिल में पढ़ना चाहिए। अब इनको क्या समझाया जाए, हजार दलील दिए तो भी समझेंगे नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अय्याम में भी दो दो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के कंधे और सहारे पर आकर नमाज अदा फरमा रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज माफ नहीं है तो हमें नमाज कहाँ हो। तो ये दिल की नमाज पढ़ने वाले, इनको क्या किया जाए, तीन दिन भूख में धूप में बनकर गुजारना, जब खूब भूख लगती है चीख मारते हैं, जब पूछना क्या कर को खाना, भूख लगती है तो दिल में खा लो, बोला क्या बोलना, तुम सब दिल वाले ना, इसलिए असल दिल ही थे, तो दिल से खा लो बस, समझ रहे भाई। तो इसलिए ये जो गुमराही है दिल दिल करके, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन फरमा दिया। उसी के साथ कजाली का सखर लकुम, अल्लाह ने इन चीजों को मुसखर किया, अल्लाह का ये नई इंतजाम फरमाते और जाहिर की ये शक्ल नहीं अपनाते तुम लोग तो तब तुम तुम्हारी कुर्बानी भी नहीं होती। इसीलिए फरमाया अल्लाह ने मातहत बनाया, मुसखर बनाया, तुम्हारे अंडर में दिया है, कदाली का सखर लकुम ली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, अल्लाह ने जिस रास्ते की रहबरी की है, जो रास्ता तुम्हें बताया है उस पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान कर सको, उस तौफीक पर अल्लाह का तुम शुक्र अदा कर सको। मुबशिरिल मुहसिनीन फरमाया के नेकोकारों को ए हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत। तो इसलिए ये जो कुर्बानी का अमल है, इस कुर्बानी के ज़ैल में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के सामने झुकने वाले, अल्लाह के सामने डरने वाले जो बंदे हैं उनकी सिफात को बयान किया। इसलिए खुलासा ये है हमारी जिंदगी ये वो सारी की सारी इताअत और फरमाबरदारी बनी हो, समझ रहे हैं। इसलिए सिर्फ चंद मामूलात कर लिए, चंद चीजों पर अमल कर लिए बस हो गया, ऐसी बात नहीं है, दीन के तमाम शोबों पर हम अमल करने वाले बने, समझ रहे हैं भाई। इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, चंद वजीफे पढ़ लिए, सुबह शाम अदा कर लिए। आमतौर से लोग यही बोलते हैं हजरत ये वजीफा होता वो वजीफा नहीं होता, भाई अंदर की जिंदगी कैसी है तुम्हारी, घरेलू जिंदगी कैसी है तुम्हारे, कारोबार का मामला कैसा है, घर बार का मामला कैसा है, उसमें तुम लोग कहाँ तक जो है इसका लिहाज रख रहे हो, शरीयत का कहाँ तक पास है, इन सब चीजों का लिहाज होना चाहिए, समझ रहे भाई। तो इसीलिए या यूह लदी नामुदुलू फिर सिल्मे काफा, ईमान वालों दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे पूरे तरीके पर, सिर्फ चिंद वजीफों को पढ़ लिए, दूसरे शोबों में अगर कमजोरी है तो फिर हम बदनाम करने वाले बनेंगे, इसको रखकर लोग बदनाम करेंगे, देखो ये जब कर लेते हैं बाकी सब जो है कुछ भी नहीं है, ढकोसले खाली हाथ सब मैसेज हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पूरी कुव्वत के साथ पूरी शरीयत पूरी सुन्नत, समझते हैं। हाँ आज तरीकत तरीकत बोलकर बहुत सारी बिदात को जी रिवाज दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, उसको फैलाया जाता है, ऐसी नई चीज है, बिल्कुल साफ याद रख लें कि एकदम हमारे जज़ाए खैर अता फरमाए अल्लाह ताला हमारे मशाइख को हमारे अकाबिर को बिल्कुल शरीयत और सुन्नत को जो है बिल्कुल मजबूती के साथ तसल्लुक के साथ उसको थाम के रखते हैं, यही खूबी। तो इसीलिए हमारा जो सिलसिला है नक्शबंदियां मुजद्दीदी जो सिलसिला है इसमें खास तौर से शरीयत और सुन्नत का पूरा अहतमाम और हर चीज को सुन्नत के पैराए में करने पर पूरी तरह तवज्जो दिलाई जाती है। तो इसलिए हमारी जो ये इबादतें होंगी या कुर्बानियां होंगी इनमें हर चीज में अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की का ध्यान, अल्लाह का ख्याल, ये चीजें हमेशा हर जगह पर होनी चाहिए। जो नेमत अल्लाह अता करे उसको शुक्रगुजारी हो, और जहां कहीं भी जरा फर्क हो तो उस पर हम सब्र करने वाले बने। इन सिफात के साथ हमारी पूरी जिंदगी गुजरे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई। तो आने वाले जो अय्याम हैं, लैल व नहार हैं, दिन और रात हैं, इन सब का हम खास तौर से इहतमाम करने वाले बने। तो इसलिए कुर्बानियों को भी खुश दिली के साथ हम देने वाले बने कि अल्लाह के नाम के साथ अल्लाह की अजमत को बयान, अल्लाह की बड़ाई को बयान करते हुए। और इसी तरीके से उन दिनों में जो तकबीरात तशरीह का वो भी वाजिब है, उसको भी अजमत के साथ हम पढ़ने वाले बने। औरतों को भी बताएं, उन पर भी पढ़ना वाजिब है। आमतौर से औरतें पढ़ती नहीं है, उनको मालूम नहीं होता मसला, समझ रहे हैं। इसी तरीके से कुर्बानियों का जो मसला है, कुर्बानी के मसाइल उलमाए किराम बयान करते हैं, उनसे तफसीलात मालूम करें, घर वालियों को मालूम कराएं, और पूरी तरीके से और खास तौर से दुआओं का एहतमाम हो। आने वाली ईद को अल्लाह तबारक व तआला खैर आफियत के साथ गुजारे, होने वाले हज को अल्लाह तबारक व तआला बेहद कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस हज को सबब बनाकर आलमी एतबार से एक हसीन तब्दीली आलम में पैदा फरमाए, ईमान वालों को अमन व सलामती नसीब फरमाए, और जहां भी मुसलमान ईमान वाले जहां भी परेशान हाल हैं, मजलूम हैं, मजबूर हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी हालत को बेहतर बनाए। बुजुर्गो याद रखो, हर हमेशा उम्मत के लिए दुआ करें, हर दिन उम्मत के कटने की, मरने की, जलाए जाने की, तबाह किए जाने की खबरें आती हैं, हर दिन आ रही। फर्द से लेकर कौमों को तबाह किया जा रहा है, बच्चों से लेकर बड़ों को निशाना बनाया जा रहा है, और हर दिन की ये बात होगी। इसलिए हमेशा पूरी उम्मत के लिए दुआओं का इस्तेमाल करें। अल्लाह 100 बार अल्लाह ताला हमें आफियत के साथ रखे। हम ये हरगिज ना सोचें कि हम तो आराम से हैं, हमें क्या, हमारी बस्ती क्या, हमारा घराना क्या, नहीं। हालात कब तब्दील होंगे, कब पलटेंगे, कब पलटा खाएंगे, कब क्या हाल होगा, कभी कुछ भी नहीं सोच सकते। अब ये बकरीद का मौका आ रहा है, गुज़िश्ता साल बकरीद के मौके पर केरला में जो सैलाब आया था, और हमारे मदरसे में केरला के बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ईद जून जो करीब आनी शुरू हुई, बच्चे बेकरार हो गए। वो कहा कि हजरत घरों का हाल मालूम नहीं है, घर वाले जिंदा हैं कि नहीं है कि कुछ पता नहीं चल रहा है, फोन से ताल्लुकात नहीं हो रहे हैं, कोई खैर खबर नहीं है, हजरत बहुत बेकरारी है। तो हम मशवरा करके उनको कुछ पहले भेज दिया गया, इसलिए कि रेलवे लाइनें कट गई थी, रास्ते ये हो गए थे, तबाह हो गए थे। तो खैर दूर दराज से होते होते वो लोग अपने घरों को पहुंचे, और फिर ईद वगैरह करके जब छुट्टियां खत्म हुई वापस आए, तो जो उन्होंने कारगुजारियां सुनाई अल्लाह पर, 2-2 करोड़ का जिसका बंगला था सुबह में, आज उसका पूरा बंगला बह गया है, वो भिखारी बन के रोड पे आके खड़ा है। ऐसी नौबतें आई, ऐसी हालतें आई, जो नाजो नेमत में पहुंचते थे वो लुकमे के मोहताज बन गए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ हमें हमेशा मुतवज्जे रहना चाहिए। अल्लाह की जो नेमत है, अल्लाह ने हमें नवाजी है, उस पर शुक्र अदा करते हुए आफियत के साथ उसकी हिफाजत मांगते हुए हमें रहना चाहिए। इसलिए हालात कब कैसे कहाँ पलटेंगे कुछ भी समझ में नहीं आता, इस लिहाज से हमेशा ईमान वाले अल्लाह ही की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह ही से हर चीज मांगे। हाँ, तो ये बात, ये इस वक्त एक और बात है बुजुर्गों, वो ये कि इंशाअल्लाह ताला इस आने वाले 15 अगस्त को हमारे इदारे ईमान में यहां पर एक बहुत जरूरी प्रोग्राम इंशाअल्लाह होने वाला है। हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ती है, और वहां जो उनको किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनको जो पढ़ाने वाले होते हैं, उधर ही की बातें वो सुनते हैं, वही समझते हैं, वही दिल में लेते हैं। इसके ज़हन में जो तब्दीलियां ला रहे हैं, और खास तौर से निसाबी किताबों में, टेक्स्ट बुकों में तक जैसी चीजें वो ला रहे हैं, उससे बिल्कुल ये साफ जाहिर हो रहा है कि आइंदा हमारी नस्लें, हमारी औलाद, हमारे अकाबिर कौन थे, हमारे असलाफ कौन थे, उनकी क्या कुर्बानियां थी, उन्होंने जी क्या क्या कुर्बानियां दी इस मुल्क के बचाने में, और जी ये सारी चीजें मस्क हो जाएंगी, बिल्कुल हमारी औलाद को ही नहीं मालूम होगी। और जो चीजें हैं, अच्छे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह को डरकर जो चीजें उम्मत को की बचाने के लिए रहबरी के लिए जो चीजें जी शुरू की थी अल्लाह की तौफीक से, जैसे दारुल देवबंद है, उसके बारे में तक निसाबी किताब में तमिलनाडु की जो है गवर्नमेंट की किताबों में तक ऐसी बातें आ गई कि जिहाद की बुनियाद पर यह तहरीक उठी है। समझ रहे हैं, एक जुमला ही काफी है पूरी इमारत को ढाने के लिए। तो ये जो बातें हैं अगर हमारे बच्चों के दिलों में आ गई तो फिर आगे चलकर हमारे बच्चे खुद हम दूसरी नजर से देखने वाले हो जाएंगे, हमारे बड़ों को, हमारे काबिर को, हमारे असलाम को दूसरे तरीके से देखेंगे, याद रख लो। हाँ, इसलिए जो कौम अपनी माजी से आगाह नहीं होती वो मुस्तकबिल में तरक्की नहीं करती, ये है। इसलिए माजी को जानना जरूरी है, हमारे बड़ों की कुर्बानियां क्या थी, उन्होंने किस तरीके से मुल्क की हिफाजत की, वो किस तरीके से वफादार थे, समझ रहे हैं। आज उनको दूसरा नाम दिया जा रहा है, तो इसलिए इन मौजूआत पर और ईमान वालों को किस तरीके से हमारी जो चीजें हैं, हमारे जो हुकूक हैं, उसको हासिल करना है जी, और हर मैदान में हर जगह पर हमको एक कामयाब तरीके पर एक कामयाब फर्द बनकर रहना है और मुल्क का अच्छा शहरी बनकर रहना है। और हमारी ये जितनी मुराहतें, जितनी रियायतें, जितनी चीजें हुकूमत की तरफ से आती हैं, उनको किस तरीके से हमें हासिल करना, और भोलेपन से रहने का ये वक्त नहीं है, अच्छी तरह याद रख लो। समझ रहे, मोमिन धोखा देता भी नहीं, धोखा खाता भी नहीं है, तो इसलिए अब धोखा खाने का जमाना नहीं है, हमें बेदार होने का जमाना। खुल्लम खुल्ला अल्लाह की शरीयत पर डाके डाले जा रहे हैं, तीन तलाक का मसला उठाकर इसको जो फैलाया जा रहा है, अल्लाह के एक हुक्म को खत्म किया जा रहा है, सुन लो इसको। समझ रहे हैं, ये कोई दुनिया की बात नहीं है, सियासत की बात नहीं है, अच्छी तरीके से सुनो। मजलिसों में ऐसी बात आती है तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत के वास्ते बातें कही जा रही है, समझ रहे हैं। अत्तलाक मरतान, कुरान में क्या है, तलाक दो मरतबा, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला दो मरतबा के बाद फइन तल्लकहा, फिर अगर तीसरी तलाक दे, तो कुरान पाक में तीन तलाक का तज़किरा है, अच्छी तरीके से याद रखो, लेकिन आज इसको खत्म किया जा रहा है। समझ रहे हैं, जो काफिरों ने ये बात कही थी, इस कुरान को बदल दो या फिर इसकी जगह दूसरा लाओ या इसको बदल दो, وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله, इस कुरान की जगह पर दूसरा कुरान लाओ, ये हमसे एडजस्ट नहीं हो रहा है, या फिर इसको बदल दो। जो बातें कही गई आज यही चीज यहाँ पेश आ रही है, याद रखो, कुरान के कानून को बदला जा रहा है, कुरान की आयतों को बदला जा रहा है, अहकाम को बदला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हमें इस जमाने में रहना है तो कुरान और हदीस से वाबस्ता होकर, अल्लाह से जुड़कर, अल्लाह के दीन से वाबस्ता होकर रहना है, हमारी औलाद को इसी तरीके पर, इसी रास्ते पर जमाना है, याद रखो। ईमान ही चला गया अंदर से, कुरान ही बदल गया, तो फिर हम क्या तस्बीह पढ़ के, क्या वजीफे पढ़ के जियेंगे, बोलो, सोच कर देखो तरी तक। तो इसलिए याद रखो अच्छी तरीके से, ऐसा वक्त बहुत नाजुक वक्त आया, ऐसे वक्त में अल्लाह के वास्ते 100 बार हाथ जोड़ के हम कहते हैं अपनी औलाद को, ये मुसीबतों से, पबजी से, ऐसे व्यवहार सिखेरों से बचाओ, तबाह हो रही है हमारी नस्ल, रात रात जाकर हराम चीजों में मुब्तला हो रही है, दिन भर सोकर, जो कौम सोती रहेगी वो कौम कैसे तरक्की करेगी, बोलिए, फितरत के और कुदरत के खिलाफ कर रही है ये कौम, रातों में सोती नहीं है, दिन में पढ़कर सोते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वजालना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद आराम के लिए, आराम नहीं कर रहे, वजालना नहारा माशा, और दिन कमाई के लिए, कमाने नहीं जाते। खसीरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया भी तबाह हो रही, आखिरत भी तबाह हो रही। अभी मुसलमानों के घर का किस्सा है, एक छोटा भाई वो खेल खेल रहा है, उसके बड़े भाई ने उसको समझाया, नहीं माना तो वो मोबाइल हाथ से छीन लिया, ये छोटा भाई गया और हथियार लाकर बड़े भाई को कतर के डाल दिया। ये ईमान वालों के घरों के किस्से हैं, ये समझो, ये आग जो लग रही है फैलती चली जा रही है, कोई घर महफूज नहीं रहेगा। इसलिए बेदार हो, बेदार अपनी औलाद को करें, उनको संभालें, क्या चीज देख रहे हैं, किन चीजों में मुब्तला हो रहे हैं, कैसी मुसीबतों में वो फंस रहे हैं। इसलिए याद रखो ऐसे वक्त में इंशाल्लाह बहुत अहम प्रोग्राम होने वाला है। हमारे जजाए खैर थे माशाल्लाह, हमारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और माशाल्लाह PhD के स्टूडेंट्स हैं, ये तबके के लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से तैयार हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये हजरत प्रेजेंटेशन करेंगे, वो PPT जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकल तौर पर भी आपको बातें समझाएंगे भी, बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। तो इसलिए इस प्रोग्राम में नौजवान नस्ल खास तौर से और सब हजरात आए, सबको हमारी तरफ से दावत है, दूर करीब के जो भी हों सब आए इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह 15 अगस्त को सुबह में होगा प्रोग्राम, 9-10 बजे से शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। सब हजरात आए, अपने औलाद को लाएं, अपने दोस्त अहबाब को बताएं, सबको लेकर आए इंशाल्लाह ताला। ये मौके बार बार नहीं आते, याद रखो इंशाल्लाह। दारुल देवबंद से भी वहां के एक उस्ताद और हमारे हजरत जी दामद बरकातुन के खलीफा वो इस प्रोग्राम में आ रहे हैं मेहमान खुसूसी के तौर पर। देखो 2-3 घंटे की बात है, कहीं भी वक्त गुजरेगा, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए घूमते फिरते हुए कहीं भी गुजरेगा, याद रखो। लेकिन अगर ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी तो हमारी नजरें खुलेंगी, हमारा जमीर जागेगा, हमारे अंदर कुछ हिम्मत और हौसले पैदा होंगे, हम कुछ काम करेंगे। तो इसलिए ऐसे मौकों को गंवाना नहीं चाहिए और लापरवाही नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं भाई। इसलिए हम सुना देते हैं इंशाल्लाह, ज्यादा से ज्यादा तादाद में नौजवानों को लाएं, अपनी औलाद को लाएं, अपने मुतालिकीन को लाएं, दोस्त अहबाब को लाएं, और ज्यादा से ज्यादा आज से ही मेहनत शुरू करके जमा करें इंशाल्लाह ताला, ताकि फायदा हो इंशाल्लाह ताला। मालूम नहीं हमारी उम्मत में कैसे हीरे जवाहर और कैसी शख्सियतें और कैसी पर्सनैलिटियां छुपी होंगी, हमें मालूम नहीं, समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर उनकी तरबियत की जाएगी तो वो चमकेंगे। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। हीरा भी एक पत्थर ही है, लेकिन जब उसको जौहरी तराशता है, उसमें चमक आती है, तो वो लाखों में बिकता है। तो ऐसे कितने हीरे हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, हमारी बिरादरी में होंगे, उनको जरा चमकाने की जरूरत है इंशाल्लाह ताला। एक तो वो प्रोग्राम होगा, उसमें तमाम हजरा शरीक हो इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात जो है, बहुत से अहबाब ने बैत के लिए दरख्वास्त की है, खुद भी रास मुझसे भी, मुलाकात पर भी और फोन के जरिए से भी बैत करने की दरख्वास्त की है। और इसलिए इस वक्त जो है इज्तमाही तौर पर कराते हैं, वक्त बाद में नहीं रहता है, तंग हो जाता है। तो इसलिए इस वक्त ये बैत की मजलिस है, जो नए अहबाब हैं वो बैत की नीयत से ये कलिमात को पढ़ें, दूसरे हजरत तौबे की नीयत से शरीक हो जाएं, फिर बाद में आकर अलग अलग से नहीं पूछना, टाइम नहीं रहता, आप लोगों को भी परेशानी होती है, हमको भी परेशानी होती है। ये वो इंशाल्लाह बैत उड़ा अंदर कलिमा चुन पड़ो, यार अंदर नियत उड़न वंदिरा इंशाला मुदल खुदवा ऊद पड़ो, अद कैटे கலிமா சொல்லுக்கு போடுங்க இன்ஷால்லா, சேர்த்து சேர்த்து கூடுதலாம் சொல்லிட்டேன் வாங்க இன்ஷால்லா தாலா. பஹலே குத்பா படா ஜாயேகா உஸ்கோ சுன்லே, உஸ்கே பாத் மே ஜோ ஹை கலிமா படா ஜாயேகா, படத்தே சலே உஸ்ஸே பஹலே அல்லாஹ் கி தரஃப் முதவஜ்ஜே ஹோகர் ஹமாரி பிச்லி ஜிந்தகி சே ஹம் தௌபா கர்தே ஹுவே ஆயிந்தா ஜிந்தகி கி பாபந்தி ஔர் ஷரியத் ஓ சுன்னத் பர் ஔர் தக்வே கி குஜாரனே கி அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா சே தௌஃபீக் மாங்கே, தில் ஹி தில் மே அல்லாஹ் சே துஆ மாங்கே। आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उसे हट कर कर अल्लाह की तरफ तवज्जो हो जाए, नियते करें अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, उनसे गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है, और मेरा दिल जज्बे शुक्र से कह रहा है
யாரும் يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الجنون ولا يسبقه الواسقون ولا يخشى الدوائر ولا تغيره الحوادث يعلم مساكن الجبال ومكائن البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض یا من اظہر الجمیل وستر القبیح یا من لا یواخذ بالجریر کی ولا یحتف السترہ یا باسطر یدینی بالرحمہ یا جابر العرب الکثیر یا رازق الطفل الصغیر یا مونس کل وحید یا صاحب کل فرید یا قریبا غیر بعید یا شاہدا غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب نسألک ان تصلی علی محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار ارے اللہ ہم آپ کے عجیب و مسکین بندے گنہگار خطاکار سیاہکار ناہنجار اے اللہ بڑے گندے مگر آپ ہی کے بندے آپ کے حضور حاضر ہیں اللہ گناہوں کے بوجھ کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اللہ زندگی بہت گناہوں میں گزری ہے اللہ اے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ نگاہیں گندی ہیں اللہ دل گندا ہے اللہ زبان گندی ہے اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں اللہ جن کے اجالے میں بھی ہوئے رات کے اندھیرے میں بھی ہوئے تنہائی میں بھی ہوئے مجمع میں بھی ہوئے اے اللہ چھوٹے بھی ہوئے بڑے بھی ہوئے اللہ جو یاد ہیں وہ بھی ہم نے کیے جو بھول چکے وہ بھی ہم سے ہوئے اللہ ہمارا وجود ہی گناہوں سے لطبت ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ کو حق ہے آپ کہیں نالائق ہو نکل جاؤ تمہارے لیے معافی نہیں ہے اللہ لیکن اللہ ہمیں یہ بھی پورا یقین ہے کہ آپ سے زیادہ معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اللہ ہمیں ہماری خطاؤں کا بھی اندازہ ہے اللہ آپ کی خطاؤں کا بھی ہمیں اندازہ ہے اللہ اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے آپ کو آپ کی ذات وفاری کا واسطہ اے اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو اے اللہ جس طریقے سے چھپایا ہے اللہ قیامت میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ جیسے ستاری کا پردہ ڈال کر اللہ جی آپ نے ہمارے ہزاروں گناہوں کو چھپایا ہے اللہ لوگ ہماری عزت کرتے ہیں اللہ لوگ ہمیں بڑا اچھا نیک سمجھتے ہیں اللہ اگر یہ گناہ کھل جائیں تو ہماری طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا اللہ ہمارے سلام کا جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا اللہ اے اللہ آپ کو آپ کی ذات ستاری اور غفاری کا واسطہ آخرت میں بھی معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے آپ کو بہت ناراض کر دیا ہے دنیا کے بدلتے حالات بتا رہے ہیں اللہ بدلتے تیور بتا رہے ہیں اللہ اب ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ پوری امت مسلمہ ہر جگہ پریشان حال ہے اللہ پٹ رہی ہے کٹ رہی ہے لٹ رہی ہے اللہ امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو چکا ہے اللہ جو جہاں چاہے بہا رہا ہے اللہ اللہ جی معاف فرما دیجیے ہمیں اعتراف ہے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اللہ آپ کی عنایتوں کا بھی اقرار ہے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ آپ نے بہت اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ ہمارا بھلا ہو جائے گا اللہ اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ دور دراز سے اے اللہ دور و قریب سے آئے ہیں اللہ معلوم نہیں کون کیسی حالت میں آیا ہے اللہ کون کتنی قربانی دے کے آیا ہے اللہ اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ آیا ہے اللہ معلوم نہیں اللہ کس حال میں یہ ہوں گے اللہ کتنے دکھیارے ہوں گے کتنے غم کے مارے ہوں گے کتنے ٹوٹے دل والے ہوں گے اللہ اللہ کسی کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے اللہ اللہ جی معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے میری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ ایک بار اعلان فرما دیجئے اللہ ہم پر بھی محبت کی نظر ڈال دیجئے اللہ آج ہمیں اے اللہ بخشے بخشائے یہاں سے بھیج دیجئے اللہ آپ کا کیا بگڑ جائے گا اللہ ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی اللہ
قریب آقا رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، ہم نے گناہوں کی وجہ سے آپ کے غضب کو بھڑکایا ہے اللہ، آپ کے قہر کو للکارا ہے اللہ، آج معافی مانگنے آ چکے ہیں اللہ، اللہ ہماری معافی کو قبول فرما لیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے اللہ، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے اللہ، کریم آقا آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اللہ اچھے ہونے کے بعد برے ہونے سے بچا لیجیے اللہ، اللہ سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچائیے اللہ، علم کے ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے بچائیے اللہ، بہت اللہ ہم دور ہو چکے ہیں اللہ، آپ کی نعمتیں کھا کھا کر آپ کی نافرمانیاں ہی کرتے جا رہے ہیں اللہ، اللہ ہی معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو اللہ جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو اللہ، آج کے حادثے اور واقعے بتا رہے ہیں اللہ کہ ہر ایک کے چنچلاؤ کا وقت قریب ہے اللہ، ہر ایک کو تیار رہنا ہے اللہ، اللہ جی اے اللہ ظاہر کی آنکھ بند ہونے سے پہلے دل کی آنکھ کو کھول دیجیے اللہ، اے اللہ دوسرے ہمیں کلمہ پڑھائیں اس سے پہلے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں ہمیں خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں ہمیں تقوی کا لباس اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اللہ جی اللہ کھل کھلا کر ہنسنے کا مزہ بہت پایا، اللہ گڑ گڑا کے رونے کا مزہ عطا فرمائیے، نگاہوں کے نگاہ اٹھا کر چلنے کا مزہ بہت پایا، اب نظریں جھکانے کا مزہ عطا فرمائیے، اللہ پیر پھیلا کر سونے کا مزہ بہت پایا ہے، راتوں کو جاگنے کا مزہ عطا فرما دیجیے اللہ، اللہ زندگی پھیکی پھیکی گزر رہی ہے اللہ، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے اللہ، اللہ دو رکعت نماز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کر سکے اللہ، آپ کے حبیب سے نازل نے فرمایا بعض لوگ آئیں گے ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جائے گی، اللہ ہمیں ایسا نہ فرمائیے اللہ، اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہمیں درست فرما دیجیے اللہ، ہماری بگڑی کو بنا دیجیے اللہ، ہمیں سنوار دیجیے اللہ، دل کی برائیوں کو نکال دیجیے اللہ، اے اللہ دل کی برائیوں سے پاک فرما دیجیے اللہ، نگاہوں کو صاف فرما دیجیے اللہ، نفسانی شیطانی شہوانی خواہشات ہمیشہ ہمارا پیچھا کر رہی ہے اللہ، ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ، آپ کی توفیق سے کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اللہ، پھر فوری بھاگ بڑے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں اللہ، اللہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا اللہ، تو قدم ہم آپ کی طرف اٹھاتے ہیں نفس و شیطان ایسی لات مارتے ہیں ہم چار قدم پیچھے ہو جاتے ہیں اللہ، اللہ کبھی تو آپ کی توفیق سے کچھ نہیں کیا کرتے ہیں، کبھی فجر بھی چھوٹ جاتی ہے اللہ، اے اللہ حرام کام ہم سے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ایک بار معاف فرما دیجیے، اے اللہ پوری امت کے حال پر ہم فرما دیجیے، پوری امت کے حال پر ہم فرما دیجیے، امت بڑی دکھی ہے اللہ، بڑی بیمار ہے اللہ، بڑی قرضدار ہے اللہ، بڑی بے روزگار ہے اللہ، بہت پریشان ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا ہے اللہ، اقوام عالم کے سامنے امت نہتی کھڑی ہے اللہ، کوئی شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا نہیں ہے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اللہ نوجوان جیلوں میں ڈھوسے جا رہے ہیں اللہ، معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے اللہ، با عزت اس عورتوں کی عزمت کو کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اللہ، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں اللہ، کھانے کو کھانا نہیں اللہ، سچ چھپانے کو ٹھکانا نہیں ہے اللہ، کب تک یہ ہوتا رہے گا اللہ، اللہ امت کی بگڑی کو بنا دیجیے اللہ، امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے اللہ، ہمارے کرتوتھی کا یہ نتیجہ ہے اللہ، ہم مانتے ہیں اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ناہن جار ہیں اللہ، بڑے گندے ہیں اللہ، لیکن آپ ہی کے تو بندے ہیں اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، وہ فرعون جو انا ربو کو ملانا کہتا تھا، تو آپ نے فرمایا اس سے پولا لہو کولن لینا، نرم بات کرنا، اللہ ہم تو آپ کو سبحان ربی العلیٰ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ، آپ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے اللہ، نرمی کا معاملہ فرما دیجیے اللہ، ہم فرعون سے تو گئے گزرے نہیں ہیں اللہ،
اللہ جی معاف فرما دیجیے اللہ, پوری امت کو معاف فرما دیجیے اللہ, ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں اللہ, ایک بار معاف فرما دیجیے اللہ, ایک بار معاف فرما دیجیے اللہ, سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اللہ, سب کو جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اللہ, وبا سے بلا سے بچائیے اللہ, بھوک مری کے اثر سے بچائیے اللہ, اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے اللہ, حسدین کے حسد سے بچائیے اللہ, اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچائیے اللہ, ظالموں کے ہاتھوں کو پکڑ لیجیے اللہ, ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے اللہ, آئے دن امت پہ حالات آ رہے ہیں اللہ, حالات آتے جا رہے ہیں اللہ, ہماری امت کو بیدار فرما دیجیے اللہ, آپ کے نیک بندوں میں شامل فرما دیجیے اللہ, اللہ پوری امت کے قلوب آپ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں, آپ اس طرف چاہے پھیر سکتے ہیں اللہ, اللہ آپ نے تاتاریوں کو ایمان سے نوازا ہے اللہ, اللہ آپ نے بڑے بڑے اللہ ظالموں اور جابروں کو ہدایت دی ہے اللہ, آج کے بھی جو ہے اللہ لوگوں کو بدل دیجیے اللہ, ہدایت دے دیجیے اللہ, ہدایت دے دیجیے اللہ, ہدایت مقدر نہ ہو تو زمین کو پاک فرما دیجیے اللہ, آپ کے بندوں کو چین و سکون عطا فرما دیجیے اللہ, آپ کی سرزمین کو پاک فرما دیجیے اللہ, اللہ جی آپ ہمیں مت دیکھیے اللہ, آپ گنبد خضرا کو دیکھیے اللہ, یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ, آپ کے حبیب کو ہم نے بہت ستایا ہے اللہ, بہت تکلیفیں دی ہے اللہ, جیتے جاگتے لوگوں نے بہت ستایا ہے اللہ, اور آج امت کے حالات آپ کے سامنے آتے ہو گے اللہ, حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی اللہ, رحم فرما دیجیے اللہ, کرم فرما دیجیے اللہ, سب کے حال کو رحم فرما دیجیے اللہ جی, ہمیں ایسا بنا دیجیے اللہ کہ ہم آپ کو پسند آ جائے اللہ, ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ اللہ ہم کو پسند آ جائے, اے اللہ سب کو صحت سلامتی عطا فرمائیے, سب کی کمائیوں میں برکت عطا فرمائیے, بے روزگاری سے بچائیے, اے اللہ پریشان حالی سے بچائیے, آپس میں محبت عطا فرمائیے, گھر بار میں پھوٹ پڑ چکا ہے اللہ, بھائی بھائی میں دوری ہو چکی ہے اللہ, اپنے غیروں کی طرح ہو چکے ہیں اللہ, سب کے دلوں میں محبتیں ڈال دیجیے اللہ, اے اللہ دلوں کو ملا دیجیے اللہ, بھائی چار کی عطا فرما دیجیے اللہ, اے اللہ گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ, گھر بار کی کاروبار کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, اے اللہ گھروں میں وسعت عطا فرمائیے, اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیے, گناہوں کی مغفرت فرمائیے, بخشش فرمائیے, سب کے حال پر رحم فرمائیے, دین دنیا آخرت کی بہتری عطا فرمائیے, اے اللہ یتیموں کی, اسیروں کی, بیواؤں کی, معذوروں کی, مجبوروں کی مدد فرمائیے, مرحومین کی بخشش فرمائیے, امت کے جان کی, مال کی, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, اقدار کی حفاظت فرمائیے, اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے, جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے, اللہ مسجدوں کی, مدرسوں کی, مکتبوں کی, مرکزوں کی حفاظت فرمائیے, دینی اداروں کی حفاظت فرمائیے, دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے, اقامت دین کی نسبت پر جتنی محنتیں کوششیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرمائیے اللہ, سب کی حفاظت فرمائیے اللہ, ہمارے دار ایمان کی حفاظت فرمائیے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے حفاظت فرمائیے اللہ, اے اللہ اے اللہ, اس میں جتنے لوگ بھی خدمت کرتے ہیں, کیے ہیں, کر رہے ہیں, کریں گے اللہ, سب کو آپ اپنی شائع نشان بدلا عطا فرمائیے, جزا عطا فرمائیے, کریم آقا یہاں پڑھنے والوں کو قبول فرمائیے, پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے, اللہ اس کا انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائیے, اے اللہ جو جس سارے لائن سے بھی اللہ مدد کرتے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیے, اللہ ہر طرف سے حفاظت فرمائیے, اللہ بری نظر سے بچائیے, حاسدین کے حسد سے بچائیے, اپنوں اور غیروں کے شر سے بچائیے, اے اللہ اس کے فیض کو عام فرمائیے, اے اللہ اس کے خیر و برکات کو دور تک پہنچائیے, اے اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے, اللہ اس کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے, رکاوٹوں کو دور فرمائیے, اے کریم آقا, اے اللہ اے اللہ, جو جو بیمار ہیں اللہ, جتنے نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ, سب کو صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ, ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پہ ڈاگے رکھا ہے فرمائیے اللہ, اللہ ایک ایک اٹھتے جا رہے ہیں اللہ, اللہ جتنے باقی ہیں اللہ, مشائخ ہیں, علماء ہیں, اکابر ہیں اللہ, ان سے بھی ہمارے والدین ہیں اللہ, ان سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے, ان کے فیض کو عام و تام فرمائیے, صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے, اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں اللہ, ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اللہ, اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے, وصلی اللہ علیہ خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.